मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। के पुनस्ते परीशः किमर्थं वा ते सह्यन्त इतीदमाह। वे परीश कौन से हैं और किस लिए उनको सहा जाता है? इस तरह प्रश्न करने पर यह सूत्र आचार्य उमास्वामी कहते हैं, मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिसोढव्याः परीशाः। मार्गाच्यवन संवर का वर्णन चल रहा है, इसलिए मार्ग का अर्थ होता है संवर मार्ग। उससे अच्यवन अर्थात मार्ग छूट न जाए इस उद्देश्य से, और निर्जरार्थम कर्मों की निर्जरा करने के लिए, परीशः परिसोढव्याः, जो परीशः होते हैं वो सहन करने योग्य होते हैं, भली भांति उन पर विजय प्राप्त करना होता है। परीशहों पर विजय प्राप्त करने से संवर मार्ग नहीं छूटता और निर्जरा होती है, इसलिए परीशः सहन करने योग्य है। संवरस्य प्रकृतत्वात् तेन मार्गो विशिष्यते। संवर का प्रकरण होने के कारण उससे मार्ग विशेषित किया जाता है, अर्थात जो सूत्र में मार्ग शब्द आया है उसका विशेषण संवर है, संवर मार्ग, संवर मार्ग इति। तदच्यवनार्थम निर्जरार्थम च, उससे न छूटने के लिए और निर्जरा के लिए भी। परिसोढव्याः परीशः, परीश सहन करने योग्य होते हैं। क्षुत पिपासादि सहनं कुर्वन्तः, क्षुधा पिपासा आदि को सहन करने वाले, जिनोपदिष्टान मार्गाद अप्रच्यवन मानस मानास, जिनोपदिष्टान मार्गाद अप्रच्यव मानाः, भूख प्यास आदि को सहन करने वाले, जिनेंद्र भगवान द्वारा उपदिष्ट मार्ग से विचलित नहीं होते और विचलित न होते हुए तन मार्ग परिक्रमण परिचयन, उस मार्ग पर आगे बढ़ने के अभ्यास द्वारा कर्मागम द्वारम संवृण्वन्तः, कर्मों के आगमन द्वार को संवृत कर डालते हैं और संवृत करते हुए औपक्रमिकम कर्म फलम अनुभवन्तः, पुरुषार्थ पूर्वक कर्मों के फल का अनुभव करते हुए क्रमेण निर्जीर्ण कर्माणो मोक्षणम मोक्षम आपनुवन्ति, क्रम से निर्जीर्ण हो गए हैं कर्म जिनके ऐसे होते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए परिशय जय कल्याणकारी है। तत्स्वरूप संख्या संप्रतिपत्यर्थमाह, परीक्षाओं के स्वरूप, परीक्षाओं की संख्या की भली भांति जानकारी प्राप्त करने के लिए आह आचार्य कहते हैं। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नाग्न्यारति स्त्री चर्या निषद्या शय्याक्रोश वध याचना लाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी 22 परिषदों के नाम लिखे हुए हैं। परिषद का अर्थ जिसको सहन करना होता है कष्ट। क्षुदादयो वेदना विशेषा द्वाविंशति, क्षुद आदिक जो भूख आदिक जो वेदना विशेष है वो 22 है। एतेषां सहनम मोक्षार्थिना कर्तव्यम, मोक्ष चाहने वालों के द्वारा इन्हें सहन करना होता है। तद यथा, किस प्रकार सहन करते हैं तो उसकी प्रक्रिया बता रहे सहन करने की। भिक्षुर निरवद्याहार गवेषिणस तदलाभे ईशल्लाभे च अनिवृत्त वेदनस्य अकाले अदेशे च भिक्षां प्रति निवृत्तेच्छस्य आवश्यक परिहानिम मनागप्य सहमानस्य स्वाध्याय ध्यान भावना परस्य बहुकृत्व स्वकृत परकृतानशनावमौदर्यस्य नीरसाहारस्य संतप्त भ्राष्ट्र पतित जलबिंदु कतिपयवत सहसा परिशुष्क पानस्य उदीर्ण क्षुद्वेदनस्यापि सतो भिक्षा लाभाद अलाभम अधिक गुणम मन्यमानस्य क्षुद्बाधाम प्रत्यचिंतनम क्षुद्विजयः। महान पुरुषार्थ से भरे हुए ये वचन है कि कैसे पुरुषार्थ करके वो भूख की बाधा को जीत लेते हैं। तो कहते हैं कि भिक्षु हूं, अब भोजन लेने के लिए भिक्षावृत्ति से जाते हैं, इसलिए यहां पर साधु को भिक्षु शब्द से अभिहित किया गया है। कैसे हैं वे भिक्षु? निरवद्याहार गवेषिणः, निर्दोष आहार की गवेषणा करने वाले हैं। अर्थात आगम के अनुसार जो साधु के लिए दोष रहित आहार है उसकी खोज करते हैं ये। तद अलाभ है, उसका अलाभ होने पर ईशल लाभ है च अथवा थोड़ा लाभ होने पर अनिवृत्त वेदनस्य, उनकी वेदना शांत नहीं होती, भूख शांत नहीं होती। थोड़ा लाभ हो गया अंतराय हो गया, अलाभ हो गया पूरी तरह से आहार ही नहीं मिल पाया, तो फिर भूख शांत नहीं होती, वेदना बनी हुई है। तो भी अकाले अदेशीच, असमय पर और अस्थान पर भिक्षा के प्रति निवृत्तेच्छस्य, जिनकी इच्छा निवृत्त है अर्थात वो इच्छा से रहित है, असमय पर और अस्थान पर भोजन करने की इच्छा होती नहीं उनको, और आवश्यक परिहानिम, आवश्यक परिहानिम, आवश्यकों में जो परिहानि होती है यानी जो नुकसान होता है, आवश्यकों में जो कमी आ जाती है उसको मनागप्य सहमानस्य, थोड़ा भी सहन नहीं कर सकते वो, अपने षट आवश्यकों में कमी को रंच मात्र भी सहन नहीं कर सकते। और स्वाध्याय ध्यान भावना परस्य, स्वाध्याय भावना और ध्यान भावना में जो तत्पर रहते हैं मतलब उसके आचरण में लीन रहते हैं, और बहुकृत्व यानी बहुत बार, स्वकृत यानी अपनी तरफ से इच्छा से जो उपवास किए जाते हैं वो, और परकृत यानी जो दंड के रूप में उपवास करने पड़ते हैं वो। अब मान लो अचानक कोई साधु की संलिखना हो गई संघ में तो फिर उपवास करना पड़ता है, तो वो परकृत हो जाता है, या फिर गुरु ने प्रायश्चित में उपवास दे दिया तो भी प्रायश्चित करना पड़ता है, तो वो स्वकृत और परकृत अनशन आवमौदर्य से, वो अनशन भी हो सकता है उनोदर भी हो सकता है, और नीरसाहार से और नीरसाहार भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, संतप्त भ्राष्ट्र पतित जल बिंदु कतिपयवत, तपी हुई भ्राष्ट्र का अर्थ होता है जिसमें भूंजते हैं, भुट्टे वगैरह जिसमें सेकते हैं ना वो वाली अग्नि, चने वगैरह भी सेकते हैं, तो उस भट्टी में पड़े हुए जल की बिंदु कतिपय यानी कुछ बूंदों के समान सहसा परिशुष्क पानस्य। अब इतने सब उपवास उनोदर और ये सब अंतराय और अलाभ के बाद स्थिति ऐसी होती है कि जो वो पानी पीते हैं कभी, तो वो पानी जैसे उस तवे पर पानी डाल दो तो फिर वो पूरा उड़ जाता है, वैसे उनके शरीर में पानी जो है परिशुष्क पानस्य पूरा सूख जाता है। और उदीर्ण क्षुद वेदनस्य, और क्षुधा की वेदना जो है वो उदीर्ण हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसी प्रकट क्षुधा वेदना के होने पर भी भिक्षा लाभात अलाभम अधिक गुणम मन्यमानस्य, वो क्या मानते हैं कि भिक्षा मिलने से अधिक गुण न मिलने में है संवर निर्जरा की अपेक्षा से। शरीर को तो हानि होती है लेकिन संवर निर्जरा की अपेक्षा से मुझे आहार मिले तो मैं करूंगा जो भी मेरे कर्तव्य हैं, लेकिन ना मिले तो फिर मेरे अधिक निर्जरा होगी। ऐसा मानने वाले जो साधु हैं उनके शुद्ध बाधाम प्रत्यचिंतनम, और ऐसा मानते हुए भूख की बाधा के बारे में विचार भी नहीं करते, तब क्षुद विजय वो भूख पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, भूख के विजेता हो जाते हैं। अब प्यास की बारी है। जल स्नानावगाहन परिशीक परित्यागिनः, पानी के स्नान का, पानी में डुबकी लगाने का, पानी के सिंचन का जिन्होंने परित्याग कर दिया है, और पतत्रिवद अनियतावास, पतत्रिवद अनियत आसन आवासत आवसत, पतत्रिवद अनियत आसन आवसत स्य, पंखी पक्षियों के समान जिनका बैठने का स्थान जितना जिनका ठहरने का स्थान निश्चित नहीं है, और ऐसी स्थिति में अतिलवण स्निग्ध रूक्ष विरुद्धाहार ग्रैष्मातप पित्त ज्वरा निशनादि विरुदीर्णाम, फिर ऐसे में चर्या ही ऐसी है साधु की कि कभी अधिक नमक डला हुआ आ जाता है भोजन में, फिर अति स्निग्ध यानी ज्यादा घी डला हुआ रहता है किसी में, फिर अति रूक्ष बिल्कुल रूखा सूखा होता है, फिर अति विरुद्ध अत्यंत विरुद्ध आहार आ जाता है, और उसके साथ साथ में ग्रीष्म का आतप गर्मियों के समय की धूप रहती है, और उसके साथ में पित्त ज्वर पित्त भड़क जाता है, पित्त बुखार होता है, और अनशान आदि उपवास आदि के माध्यम से उदीर्णाम प्रकट हुई जो शरीर इंद्रियोन्माथिनी, शरीर और इंद्रियों का उन्मथन करने वाले हाल बेहाल करने वाली पिपासाम प्यास को प्रत्यनाद्रियमाण प्रतिकारस्य, इतना भयंकर प्यास लगने के बाद भी उसके प्रतिकार के प्रति आदर नहीं करते वो, कि अगर मैं ग्रस्त होता तो अभी ठंडा पानी ले लेता तो गले में सुकून हो जाता, बिल्कुल प्यास शांत हो जाती। इस ऐसे विचारों के प्रति भी उनको कोई रुचि नहीं है, आदर भी नहीं है। और पिपासानल शिखाम, ये देखिए क्या अनुभव की बात लिखी है आचार्य महाराज ने, जिनको ऐसी वेदना हुई है वही जान सकते ना, और जिनने कभी नहीं देखा इस वेदना को उनको क्या पता। बोले वो प्यास ऐसी है कि जैसे पेट के अंदर आग की लौ जल रही हो, इतनी तेज प्यास लगी है, और उस प्यास को धृति नव मृद घट पूरित शीतल सुगंधि समाधिवारिणा प्रशमयत, धैर्य रूपी नए मिट्टी के घड़े में भरा हुआ है शीतल सुगंधित शुद्धोपयोग रूपी जल, जिनके पास उस शुद्धोपयोग रूपी जल के द्वारा उस प्यास की अग्नि शिखा को प्रशमयत बुझाते हैं वो। तो प्यास को इस प्रक्रिया से बुझाने वाले साधु के पिपासा सहनम प्रशस्यते, उनका पिपासा विजय प्यास का सहन करना प्रशंसनीय होता है, जो इस प्रक्रिया से बुझाते हैं। एक सहन करना ऐसा भी होता है कि मन मार करके सहन करते रहो, फिर देखते हैं कल आहार में मिल जाता है तो ठीक है, ऐसे मतलब एक समझौते जैसी एक प्रवृत्ति। यहां पर बड़े उत्साह के साथ एकदम समाधि शुद्ध उपयोग के जल से उस अग्नि शिखा को शांत कर देते हैं, बुझा देते हैं। नया घट इसलिए बोला कि नया घट जो होता है उसमें मिट्टी की खुशबू रहती है, तो प्यासे व्यक्ति को नए घड़े का पानी अगर पिलाओ ना तो फिर एक अलग उसको सुकून मिलता है। इसके बाद शीत वेदना की बारी है, कैसे सहन करते हैं, कैसे विजय प्राप्त करते हैं उस पर। तो कहते हैं ये उत्तर गुण है, 12 तप और 22 परिषेजय साधु के उत्तर गुण हैं। तो उत्तर गुण के धारी जो साधु होते हैं वो कैसे इन पर विजय प्राप्त करते हैं कष्टों पर। परित्यक्त प्रच्छादनस्य, जिन्होंने शरीर पर कुछ भी ओढ़ना या कुछ भी ढांकना स्वीकार न करके उनका त्याग किया हुआ है। पक्षिवधारितालयस्य, और पक्षी के समान जिनका अनिश्चित निवास है, आज इस पेड़ पर कल उस पेड़ पर, आज इस स्थान पर कल उस स्थान पर, और वृक्ष मूल पथिशिला तलादिशु, बरसात में पेड़ों के नीचे, शीतकाल में पथि यानी मार्ग में, और मार्ग में चारों तरफ से हवा आती है, चौराहे पर खड़े हो जाएं या बैठ जाएं ध्यान में तो सब तरफ से हवा ही हवा लगती है और एकदम ठंडी हवा होती है, और शिला तलादिशु, और गर्मियों में शिला के तल अर्थात चट्टानों के ऊपर, हिमानी पतन शीतलानिल संपाते तत्प्रतिकार प्राप्तिम प्रति। इस हिमानी यानी अतिशयीन हिमम इति हिमानी, व्याकरण में ऐसे रूप बनता है, जो अत्यधिक शीतल है, अत्यधिक बिल्कुल बर्फ जैसे। और बर्फ जैसे क्या, यहां पर तो हिमानी का अर्थ बर्फ की भारी राशि पतन, उसकी उसका पतन हो रहा है। और शीतल अनिल संपाते, ठंडी हवा भी चल रही है, तो इनके संप्राप्त होने पर, इनके समागम में उनके प्रतिकार की इच्छा भी जिनकी नहीं है, छोड़ चुके हैं वो इच्छा, ऐसे साधु के पूर्वानुभूत शीत प्रतिकार हेतु वस्तु नाम अस्मरत, पहले जो उन्होंने रजाई कंबल चद्दर आदि बहुत सारे पदार्थों का उन्होंने उपभोग किया हुआ है पूर्व काल में, दीक्षा से पूर्व, तो आज वो पूर्व की जो सुरक्षाएं थी ठंड से रात बचा करके अच्छे ओढ़ करके सो जाते थे, नींद लग जाती थी और फिर सुकून मिल जाता था, उसका स्मरण न करते हुए ज्ञान भावना गर्भागारे बसत, वो अब ज्ञान भावना रूपी गर्भागार में यानी अंदर के कमरे में चले जाते हैं। इतनी ठंड पड़ रही है बाहर, तो वो ज्ञान भावना रूपी जो गर्भागार है ना, शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं और वहां निवास करते हुए शीत वेदना सहनम परिकीर्तिते, शीत वेदना को सहन करते हैं तो उसका परिकीर्तन किया जाता है, यानी वो शीत बाधा के विजेता है। इसके बाद उष्ण बाधा भी बड़ी विकट होती है, निर्वाते वायु रहित, निर्जले जल रहित, ग्रीष्म रवि किरण परिशुष्क पतित पर्ण व्यपेत छाया तरुण्यट्टव्यंतरे, ग्रीष्मकालीन रवि की किरणों से सूख कर गिर चुके हैं पत्ते जहां पर, और सारे वृक्ष उस पतझड़ में व्यपेत छाया से रहित हो गए हैं। ऐसे वृक्षों वाले जंगल के भीतर यदृच्छयोपनिपतितस्य स्वेच्छानुसार पड़ी हुई आनशनाद्यभ्यंतर साधनोत्पादित दाहस्य, उपवास आदि जो अंदर से दाह उत्पन्न करने वाले साधन है, उससे जिनको दाह उत्पन्न हो गई है, अंदर में एकदम गरम गरम लग रहा है उनको, बाहर भी गर्मी है, अंदर भी शरीर के भीतर गर्मी है, और दावाग्नि दाह परुष वातातप जनित गल तालु शोषस्य, और जंगल में आग भी लग जाए और परुषवात यानी एकदम गरम गरम रूखी हवा बहने लग जाए, तो उससे उत्पन्न गल तालु शोष, गला और तालु अंदर का दोनों सूख जाते हैं, ऐसी अवस्था वाले जो मुनि है वे तत्प्रतिकार हेतुन बहुन अनुभूतान अचिंतयत, उसके प्रतिकार के बहुत सारे हेतुओं का उन्होंने पहले भोग किया हुआ है, ठंडाई वगैरह कई चीजें ले चुके हैं, आज उसका स्मरण भी नहीं करते, विचार भी नहीं करते। प्राणी पीड़ा परिहारावहित चेतसश, अहिंसा में जिनका मन लगा हुआ है, कोई ऐसा विचार भी मन में नहीं लाते जिससे ये मेरी गर्मी दूर हो जाए और ठंडक आ जाए। ठंडक आने में कई प्राणियों को बाधा हो सकती है, हवा करेंगे तो वात कायिक जीवों को बाधा होगी, पानी का कुछ करेंगे तो फिर जल का एक जीवों को बाधा होगी, कई प्रकार की बातें हैं, तो उनको ये सब भावना ही नहीं है। चारित्र रक्षणम उष्ण सहनम मित्युपवर्ण्यते, और इस तरह से चारित्र की रक्षा करते हुए गर्मी को सहन कर लेना उष्ण परिचय विजय है। शीत परिचय विजय, उष्ण परिचय विजय के विषय में वड्डा राधने की कुछ कथाएं भी हैं कि कैसे वो मुनिराज गर्मी को सहन करते हैं, कैसे वो ठंड को सहन करते हैं। अभी एकदम अभी अभी जो कथा आई थी ना, उसमें शीत परिचय विजय का वर्णन था। देखिए, सिरी दिंड भडार, जिन्होंने राजा की पर्याय में रानी के तोते को मार दिया था, क्योंकि वो तोता रानी को ही खेल में जिताता था, तो उसको उन्होंने मार दिया था और वो व्यंतर देव बन गया था। अब ये श्रुत केवली होकर गुरु सानिध्य में दीक्षा होती है इनकी। दीक्षा का कारण ऐसा था कि वो ऊपर छत पर जाकर के बादलों की शोभा देख रहे थे, तो एक चैत्यालय जैसा आकार बना, तो राजा ने एक पट बुलवाया, एक वस्त्र जिस पर वो उसको चित्रित करना चाहते थे बादल की शोभा को, लेकिन वो चित्र बना रहे थे इसी बीच वो बादल बिखर जाते हैं, तो फिर उनको लगता है कि यहाँ कुछ भी सार नहीं है, संसार में सब नष्ट हो जाता है, तो फिर वो दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेकर 12 वर्ष तक गुरु के सानिध्य में रहकर अध्ययन आदि करते हैं श्रुत केवली बनकर। फिर गुरु आदेश देते हैं कि अब आप परिपक्व हो, एकल विहारी हो सकते हो। तो चतुर्थ काल में भी वज्रऋषभ नाराज संगनन को धारण करने वाले साधु एकदम से वैसे नहीं हो जाते हैं कि बिल्कुल एक ही बार में सब कुछ हो जाए। कई ऐसे साधु हैं जिनको इतना अभ्यास कराते हैं गुरु, फिर उनको विहार की अनुमति देते हैं। तो विहार करते करते वो अपनी नगरी पहुंचते हैं, पूर्व नगरी, और वहाँ कायोत्सर्ग मुद्रा में उद्यान के अंदर खड़े हो जाते हैं। तो फिर वो व्यंतर जो था वो विचार करता है कि अरे ये वही राजा है जिसने मुझे मारा था। वो रानी जब जीतती थी तो दो लाइन खींचता था वो तोता, और राजा जीतते थे तो फिर एक लाइन खींचता था। तो फिर राजा हार ही गए ऐसे में, तो फिर राजा ने गुस्से में उसको मार दिया। अब वो व्यंतर बन करके फिर ये कायोत्सर्ग उद्भव कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यानस्थ होते हैं, तो व्यंतर अपने पूर्व भव में इतना बड़ा जो दंड दिया था राजा ने, यानी उनके प्राण ही ले लिए थे, तो उसका स्मरण करके वहां पर रात को एकदम ठंडा वातावरण बना देते हैं, अति शीतल, और फिर बारिश बर्फ बारी करते हैं। और वो मुनिराज समझ जाते हैं कि ये देवोपसर्ग है, और फिर बस दो, एक प्राकृत गाथा और एक संस्कृत गाथा आई है कि मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं, सब मुझे क्षमा कर दो, मेरा सबके प्रति मित्रता का भाव है, किसी के भी साथ मेरा वैर नहीं है। अच्छे द्योनंत सौख्यो हम वेत्ता पूर्वो निरंजन सर्व दुख करण देहम त्यजामीनम परिस्फुटम। और जैसे ही उनको लगता है कि अब इतनी भयंकर उपसर्ग की स्थिति में मेरी आयु पूर्ण होने जा रही है, तो फिर वो बस एक ये इतना विचार करते हैं कि मैं कट नहीं सकता, मैं दुखी नहीं हो सकता, मैं अनंत सुख स्वरूप हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं अपूर्व हूं, मैं निरंजन हूं। इस सर्व दुखकारी शरीर को अब मैं छोड़ता हूं। और इतना विचार करके वे शुक्ल ध्यान में चले जाते हैं और केवल ज्ञान मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे परिषय और उपसर्गों को जीतने वाले मुनिराज मार्ग से च्युत नहीं होते, और उनके कर्मों की निर्जरा ऐसी होती है कि उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दंश मशक ग्रहण उपलक्षणम यथा काकेभ्यो रक्षताम सर्पी। दंश मशक जो शब्द आया है वो उपलक्षण है। उपलक्षण का अर्थ होता है उस लक्षण को पास में समझना, उप का अर्थ होता है समीप, तो उसके आसपास भी जो इसमें शामिल हो सकते हैं उनको कर लेना। जैसे कौवों से घी की रक्षा की जाए, इति उपघातकोपलक्षणम काक ग्रहणम। तो जो घी को नुकसान पहुंचा सकते हैं ऐसे कौवों से भी और फिर अन्य प्राणियों से भी घी की रक्षा करना, इसका अर्थ निकलता है। तीन, इससे दंश मशक मक्षिका पिशुक पुत्तिका मत्कुण कीट पिपीलिका वृश्चक आदयो गृह्यन्ते। क्या क्या ग्रहण करेंगे इसमें दंश मशक में? डांस, दंश माने बड़े मच्छर को दंश दंश बोलते हैं, मशक यानी छोटा, मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी, काटने वाली मक्खी जो आती है, जो काटती है तो ऐसे चिल चीख निकल जाए मुंह से किसी के। अब यहाँ कुद्रे मुख में थी ऐसी मक्खी, चौके में जो लोग काम कर रहे थे तो उनको काट रही थी, और रास्ते में चलते चलते भी काटती, यहां पर भी है, यहां पर भी है, हाँ वो जो भी है वो मक्खी के समान ही आकर के बैठता है काट के, फिर उड़ाओ तो उड़ जाता फटाक से। फिर पिशुक, पिशुक एक ऐसा जीव होता है कि जो अभी हम लोग सबको, कई लोगों को काट चुका है, वो ऐसे चिपक जाता है और अंदर वो खून भरने लग जाता है अपना, कई दिनों तक चिपका रहता है वो। फिर पुत्तिका, ये भी कोई दूसरे प्रकार का जीव है। मत्कुण याने खटमल। फिर कीट याने और दूसरे कीड़े हैं। पिपीलिका याने चीटी है, और वृश्चक आदि बिच्छू वगैरह हैं। अब ये सब काटने वाले प्राणी हैं, इन सबको ग्रहण कर लेना। डांस मच्छर का मतलब ये है कि जो भी जीव जंतु काटते हैं उनकी बाधा को भी सहन करना है। कैसे करना है? तत्कृताम बाधा प्रतिकाराम सहमानस्य, उनके द्वारा की जाने वाली जो बाधा है जिसका कोई प्रतिकार नहीं करेंगे साधु, तो उनको सहन करने वाले साधु जो है, तेषाम बाधाम त्रिधाप्यकुर्वाणस्य, उनको बाधित भी नहीं करेंगे। तीन प्रकार से मन वचन काय से उनको बाधा भी नहीं पहुंचाएंगे। मन से कैसे बाधा पहुंचाए? कि ऐसे ध्यान लगा रहे हैं कि बस अब कोई कीड़े मेरे पास नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहे ऐसे। या फिर वचन से कि भाई देखो कुछ करो, यहाँ पर बहुत मच्छर या ये सब जीव जंतु है, देखो कुछ करो, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग साधुओं की सेवा करो ढंग से। या फिर काय से खुद उनको पकड़ पकड़ करके वहां से हटाएंगे नहीं। तो ये परिषय जय है। तद वेदना सहनम, और निर्वाण प्राप्ति मात्र संकल्प प्रावरणस्य, अपने शरीर पर क्या ओढ़ लेते हैं उनसे बचने के लिए, निर्वाण प्राप्ति मात्र का जो संकल्प रूपी कंबल है या जो मच्छरदानी है उसको अपने शरीर उसके अंदर चले जाते हैं, अपने शरीर को उससे ढांक लेते हैं। और तद वेदना सहन, और फिर उस वेदना को शांति सहन कर लेते हैं। उसको दंश मशक परिशह क्षमे इत्युच्यते, दंश मशक परिशह विजय कहते हैं, सहना कहते हैं। फिर जात रूपवत, जन्मे हुए बालक जैसी मुद्रा के समान निष्कलंक निर्विकार, जात रूप धारणम अशक्य प्रार्थनीयम, उस मुद्रा को धारण करने से कोई कुछ मांगेगा नहीं उनसे। बाकी कोई भी मुद्रा होगी तो फिर कोई मांग सकता है कि भी मुझे कुछ दे दो। अब भिखारी लोग कभी दिगंबर साधु को देख करके ऐसे नहीं करते, उनके पीछे जो चल रहे हैं उनको देखकर करते, लेकिन मुनि को देखकर नहीं करते। और याचना रक्षण हिंसनादि दोष विनिर्मुक्तम, किसी चीज को मांग करके उसकी रक्षा करना, उसको धोने वगैरह में हिंसा करना आदि दोषों से विनिर्मुक्त है साधु की मुद्रा। निष्परिग्रहत्वात्, परिग्रह रहित होने से निर्वाण प्राप्तिम प्रत्येकम साधनम, निर्वाण प्राप्ति के प्रति एक अद्वितीय साधनम, अनन्य बाधनम, अन्य को बाधा नहीं देने वाला है दिगंबर रूप नाग्न्यम बिभ्रतम, ऐसे नग्न रूप को धारण करने वाले साधु के मनो विक्रिया विप्लुति विरहत, मानसिक विकारों से होने वाली जो विप्लुति है उसके विरह से अर्थात उसके अभाव से स्त्री रूपाण्यत्यंता शुचि कुणप रूपेण भावयत, स्त्रियों की सुंदरता को अत्यंत अपवित्र और कुणप का अर्थ होता है अत्यंत घृणित रूप से भावित करने वाले, और रात्रिन दिवम ब्रह्मचर्य अखंड मातिष्ठ मानस्य, रात दिन अखंड ब्रह्मचर्य में स्थिर रहने वाले के वाले साधु के अचेल व्रत धारण वनवद्यम अवगंतव्यम, ये नग्नत्व व्रत को धारण करना निर्दोष माना जाता है। तो ये भी नग्नता भी एक परिचय एक कष्ट है, इस पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। संयतस्येन्द्रियेष्ट विषय संबंधम प्रति निरुत्सुकस्य, जो संयत है वो इष्ट इंद्रियों के विषयों के संबंध के प्रति उत्सुक नहीं है, और गीत नृत्य वादित्रादि विरहितेषु शून्यागार देवकुल तरुकोटर शिलागुहादिषु, शून्य घर, अब नाचने गाने बजाने की कोई आवाज जहां पर नहीं है ऐसे शून्य अगार में, देवकुल यानी मंदिर में, तरुकोटर यानी वृक्ष के अंदर जो खोल बन जाती कभी खाली जगह हो जाती है वहां पर, शिला चट्टान पर, गोगिरी गुहादिशु और गुफा आदि में, स्वाध्याय ध्यान भावना रतिमास्कंद, तो स्वाध्याय और ध्यान भावना में प्रीति को प्राप्त करने वाले साधु के लिए दृष्ट श्रुतानुभूत रति स्मरण तत्कथा श्रवण काम शरप प्रवेश निर्विवर हृदयस्य, देखे हुए सुने हुए भोगे हुए जो उस विषय संबंधी कार्य थे, उस प्रीति के कार्य का स्मरण, उसका उसकी चर्चा को सुनना, ऐसे जो काम के बाण हैं कामशर, उसके प्रवेश से जिनका हृदय छिद्रित नहीं हुआ है, अर्थात जो इन चीजों से दूर है। और प्राणिषु सदा सदयस्य, प्राणियों के प्रति सदा ही सदय है, दया सहित है, उनके आरति परिषह जयो वसेय, निश्चित कर लेना कि उन्होंने आरति परिषह को जीत लिया है। क्योंकि जितने सुंदर सुंदर इंद्रियों के विषय हैं उनसे वो ऊपर उठ चुके हैं। अभी इतना रखते हैं। जैनम जेतु शासनम।